समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं लेकर देश और दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
Namaskar and hello Jaya. Good morning listeners tuned into FM Gold. Another day, another interesting edition of Art Saveri coming up right away. So Jaya, why don't we begin with some news headlines?
बिल्कुल सुभद्रा, तो नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। बजट के बाद आयोजित होने वाले इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजी व्यय, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग सेक्टर सुधार, वित्तीय सेक्टर प्रबंधन, पूंजी बाजारों की मजबूती और कर सुधारों के जरिए जीवन सुगमता जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख विषयों पर बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार की श्रृंखला में यह पहली ऑनलाइन संगोष्ठी है। इन संगोष्ठियों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से लाभ लेना और प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना है ताकि व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर बजट घोषणाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। वेबिनार में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान, बाजार, सरकार और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
The Nationalist Congress Party, NCP, has unanimously elected Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar as party's national president. The decision was taken at NCP's National Convention 2026 held in Worli, Mumbai yesterday. The party also announced Ajit Pawar's son, Parth Pawar, as its candidate for the Rajya Sabha elections. In a social media post, the newly elected NCP president, Sunetra Pawar, expressed gratitude towards party senior leaders, office bearers and workers for showing trust in her leadership. Ms. Pawar said that the void created by the departure of Ajit Pawar still unsettles the heart. She further said that farmers are at the center of her party's ideology and the NCP will focus on increasing the use of modern technology and artificial intelligence to make farming more profitable.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास देखेंगी। राष्ट्रपति राजस्थान के दो दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायु शक्ति अभ्यास से पहले वे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरेंगी। प्रचंड हेलीकॉप्टर स्वदेश में विकसित और विनिर्मित देश का पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम भारत पाकिस्तान सीमा के निकट पोखरण फायरिंग रेंज से भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति प्रदर्शन देखेंगी।
Prime Minister of Canada, Mark Carney, will pay an official visit to India from today until the 2nd of March. This will be Prime Minister Carney's first official visit to India. External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Carney will arrive in Mumbai today. Over the next 2 days, he will participate in separate business engagements, interact with Indian and Canadian CEOs, industry and financial experts, innovators, educators, as well as Canadian pension funds based in India. Prime Minister Carney will arrive in New Delhi on 1st of March. The next day, Prime Minister Narendra Modi and the Canadian Prime Minister will hold delegation-level talks at Hyderabad House.
और सुभद्रा, अब मेरे पास विमान सेवा लेने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों के लिए टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कुछ शर्तों के साथ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। सीधे विमानन कंपनी की वेबसाइट से बुक किए गए टिकट में यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में गलती की सूचना देता है तो सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। विमानन कंपनी को रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी।
In Nagaland, the first Northeast Festival of Rice, Grains of Heritage commenced at Agri Export Chomok Kedima yesterday. We have a report.
The two-day event is organized by Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Nagaland Chapter, in collaboration with the State Department of Agriculture, ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region and the Northeast Zone Cultural Center. Inaugurating the festival, Advisor for Agriculture, Government of Nagaland, Masung Yanthan, termed the event historic and emphasized the cultural significance of rice for Northeast communities, highlighting the Northeast as a globally recognized hotspot of agrobiodiversity. Mr. Yanthan said Nagaland alone has more than 200 identified indigenous rice varieties adapted over generations to diverse microclimates. The advisor further informed that Nagaland's new agriculture policy 2026 has received cabinet approval and will be implemented soon. The two-day festival features technical sessions, craft section, and a marketplace with participation from all Northeast states. With Asunuo's report from Kohima, this is Raghu for Aaj Savere.
Afghanistan launched a retaliatory attack against Pakistan last night following Pakistani airstrikes on Afghan border regions earlier this week. In a press statement, the Afghanistan's Ministry of National Defense said that the posts of the Pakistani troops were captured under heavy attacks on the Durand Line. It stated that a total of 55 Pakistani soldiers were killed, two bases, and 19 posts were captured. The ministry said that these attacks targeted Pakistani military forces along the Durand Line near the provinces of Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar and Nuristan. Afghanistan further claimed that their assigned objectives were achieved as planned in these operations. During the four-hour operation, dozens of light and heavy weapons, ammunition and military supplies were seized by Afghan forces. Additionally, an enemy tank was destroyed and a large military transport vehicle was captured. Afghanistan has also claimed that 8 of their soldiers were killed in the retaliatory operation and 11 others got injured. Similarly, 13 civilians were also injured in a missile attack on a refugee camp in Nangarhar by Pakistan, including some women and children.
तो सुभद्रा, अब खेल की खबर बता देते हैं. तो हम बात करेंगे कल के आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में, जहां भारत बनाम जिम्बाब्वे का मैच था चेन्नई में, और जहां भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया. सुभद्रा, ये मैच बहुत जरूरी था कि सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 256 रन बनाए और 257 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी. जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने सर्वाधिक 97 रन बनाए. भारत के अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या ने नाबाद 50, तिलक वर्मा ने नाबाद 44 और अभिषेक शर्मा ने 55 रन की पारी खेली. हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया. और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं
चेन्नई से. हाँ, द चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल नवीन इज ऑन अ 3-day विजिट टू तमिलनाडु टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ वेरियस केसेस बीइंग हैंडल्ड बाय द एजेंसी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. As the latest order of the Madras High Court orders are in favour of the ED, directing the State Police's Directorate of Vigilance and Anti-Corruption to file an FIR on corruption charges against the Municipal Administration Department based on the ED's communication, is expected to be discussed today. Chennai's first musical Super Tree Tower is set to open in the coming weeks. The 8-story structure promises to become a new urban icon and a prime spot for sunrise and sunset views. Equipped with 2 lifts and staircase access with landing spaces, the 8-story tower is designed for smooth visitor movement, along with live plants wrapping its stem for a striking vertical garden effect. The 7th floor will house a cafe overlooking the skyline. The tower will be inaugurated soon.
और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चांदनी चौक में बिजली के तारों को भूमिगत करने की परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चांदनी चौक सदियों से व्यापार और संस्कृति का जीवंत केंद्र रहा है, लेकिन बिजली के तार इसकी सुंदरता और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली के विरासत को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी। 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है।
और कुछ और जानकारी है दिल्ली से कि दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज और कल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार आज राजधानी के राजोकरी गांव, मैदानगढ़ी, पूर्वी कैलाश के बी ब्लॉक, धोबी घाट गढ़ी में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। वहीं कल मस्जिद मोड, सराय काले खां के डीडीए फ्लैट, किशनगढ़ और सिद्धार्थ एनक्लेव सहित आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी जमा कर ले। साथ ही स्थानीय निवासी आवश्यकता पड़ने पर पानी के टैंकर के लिए हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। उधर दिल्ली नगर निगम ने एमटीएस डीवीसी कर्मचारियों का वेतन 17,500 से बढ़ाकर 27,900 रुपए कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से इस लंबित मांग को पूरी होने से लगभग 4,000 परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का 57वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन शामिल होंगे। IIMC के कुलाधिपति तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समारोह की अध्यक्षता करेंगे। IIMC के सभी 6 परिसरों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के शीर्ष छात्रों को 23 नगद पुरस्कार सहित 35 पदक दिए जाएंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति IIMC नई दिल्ली में नए अकादमी ब्लॉक और छात्रावास ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इंक्यूबेशन सेंटर में क्रिएटर्स लाउंज का उद्घाटन करेंगे।
नाउ मूविंग टू बेंगलुरु नवजया, कर्नाटका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर NS बोसे राजू अनाउंस दैट इनोवेशन लैब्स इन ओवर 60 रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट साइंटिफिक टेंपर एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। He was speaking after inaugurating the celebrations at the Jawaharlal Nehru Planetarium to mark the National Science Synex Day. Organized by the Department of Science and Technology, the minister said that 6 crore rupees has been allocated under SEPSP TSP grants for 2025-26 to set up the labs. GNA India Private Limited has launched a major rural connectivity initiative to eliminate network blind spots in remote regions across India. Aligned with Digital India Vision and supported by the Office of the Principal Scientific Advisor, the project aims to provide reliable internet access to villages and Tier 2 and 3 towns. GNA is collaborating with Bharat Sanchar Nigam Limited to integrate advanced digital platforms with existing telecom infrastructure. What do you have now?
अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए 1,290 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों से अपराध स्थलों पर और हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर आने वाली आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया देने का समय बेहतर होगा। नए बेड़े में 657 दोपहिया और 633 चार पहिया वाहन शामिल है। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 90 पुलिस स्टेशनों में प्रत्येक को गश्त को मजबूत करने और नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 10 वाहन दिए जाएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र में प्रख्यात कवि कुसुमाग्रज की जयंती पर मनाए जाने वाली मराठी भाषा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज विधानसभा के केंद्रीय हॉल में जावे विनोदाच्य गावा नाम के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ राज्य नेताओं की उपस्थिति में VSPH संसदीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संपादित पुस्तक लोक सेवाचा लोक जागर का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में शास्त्रीय मराठी साहित्य में हास्य पर चर्चा, प्रसिद्ध रचनाओं का पाठ और संगीत प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
हैदराबाद न्यूज नाउ, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी अफर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द ड्वार्फ एसोसिएशन हेल्ड एट रवींद्र भारती इन हैदराबाद यस्टरडे। एड्रेसिंग द गैदरिंग एज द चीफ गेस्ट, ही हाईलाइटेड दैट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप, रिजर्वेशंस फॉर द स्पेशली एबल वर इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 4%। ही नोटेड दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी रिस्टोर्ड देयर डिग्निटी बाय इंट्रोड्यूस using the term Divyangjan and pledged to continue resolving their grievances. A significant highlight of the event was the felicitation of Tiruputtamma, a dwarf woman who achieved a remarkable victory as an independent candidate for the position of Sarpanch in Chinnapendiyala village, Jangaon district, during the recent local body elections. Jaya, what do you have now?
अब चलते हैं जॉय सिटी कोलकाता की ओर, जहां ईडन गार्डन्स में रविवार को होने वाले भारत बनाम वेस्ट इंडीज T20 विश्व कप मैच में दर्शकों की सुविधा के लिए मेट्रो रेलवे ने दो विशेष देर रात की ट्रेनों की घोषणा की है। कल जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार एस्प्लेनेड स्टेशन से रात 11:15 बजे दो ट्रेन एक साथ रवाना होंगी, एक दक्षिणेश्वर की ओर और दूसरी न्यू गरिया क्षेत्र के कवि सुभाष की ओर। यानी कि गौरतलब है कि केवल एस्प्लेनेड स्टेशन पर स्थित टिकट काउंटर ही दर्शकों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और सुभद्रा के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य है और दिन भर मौसम सामान्य रहेगा। शहर में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर कोलकाता में भी आज आसमान साफ रहेगा, शहर में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
Chennai had fog mist in the morning. We'll have partly cloudy sky will be seen later on. Minimum temperature was 23 degrees Celsius. Maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected a partly cloudy sky, becoming generally cloudy towards afternoon or evening or night. Minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have mist. Temperature will hover between a minimum of 21 degrees Celsius, a maximum of 34 degrees Celsius. And Jaya, before moving on to our history section, let's talk about a very important day today.
Bilkul.
World NGO Day is being celebrated today globally, honoring NGOs, non-profit organizations and the people shaping a better world, recognized by the governments, organizations, communities worldwide. The Global Council is the advisory body for World NGO Day, uniting civil society leaders, executives, entrepreneurs, academics and political figures who are committed to advancing the cause and preserving the legacy of this global day worldwide.
बिल्कुल। और सुभद्रा, इस वर्ष की थीम है एम्पावरिंग ग्रासरूट मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि एक स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलनों को सशक्त बनाना। और एनजीओ बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं और क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए वो लगातार कार्यरत है कि मानव को, इंसानों को उनका अधिकार मिले या फिर जो वंचित लोग हैं उनको सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो अब बढ़ते हैं हम हिस्ट्री सेक्शन की ओर और बात करते हैं कि आज के दिन ने अपनी विशेष पहचान किस तरह से दर्ज की। तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दो बहुत बड़ा आविष्कार आज के दिन हुआ था। अगर हम 1879 की बात करें तो आज ही के दिन दुनिया का पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरीन की खोज की गई थी। और 1932 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक अणु का केंद्रक बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस केंद्रक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि भौतिकी में पढ़ते हैं। और इस खोज के बाद अणु के केंद्रक को अलग करना संभव हुआ और जिससे परमाणु बम बनाने की राह प्रशस्त हुई।
1944, Dominican Republic declared independence as a sovereign state. 1872, Charlotte E. Ray graduated from Howard Law School, becoming the first African-American woman to practice law in the United States. 1911, inventor Charles F. Kettering demonstrated his electric automobile starter in Detroit by starting a Cadillac's motor with just the press of a switch instead of hand cranking. And 1935, at the 7th Academy Award Ceremony, 6-year-old ascendant Hollywood star Shirley Temple received the first ever kid-sized juvenile Oscar.
और 2008 में लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया था और 2010 में भारत ने 8वीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण 25 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया था.
एंड 1942 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जेम्स स्टैनली हे डिस्कवर्ड द सोलर रेडियो वेव्स.
And moving, में एक और महत्वपूर्ण
yes, of course. And also, you know, today, historically, you already talked about it, is Marathi Language Day, commemorating the birth anniversary of Kusumagraj, a popular Marathi author and poet who wrote about freedom and justice. Of course, his real name was Vishnu Vaman Shirvadkar. His work was like Vishakha is considered to be one of the masterpieces of Indian literature, along with Nat Samrat, that earned him a Sahitya Academy Award, Padma Bhushan and Gyanpeeth Award. And what else do you what do you have?
हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद को. उनकी पुण्यतिथि है आज. चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में अली राजपुरा में हुआ था, जो अभी मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है. उनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था. बेहद गरीब परिवार में जन्मे चंद्रशेखर ने मात्र 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था. 17 वर्ष की उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से सम्मिलित हो गए. इस दल के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया. 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान 15 साल की उम्र में पहली बार पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेल बताया था, और जिसके बाद वे आजाद कहलाए. और ये प्रसंग बहुत ही चर्चित है. ये काकोरी कांड और सैंडर्स वध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आजाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, जिसे निभाते हुए अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के पर उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अंतिम गोली से खुद को शहीद कर लिया. आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी और तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी. उन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे. और आज ही पुण्यतिथि है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत की स्वाधीनता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर की. अपने कार्यकाल में उन्होंने कई संसदीय परंपराएं स्थापित की थी. उन्हें दादा साहिब के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवक चंडिका दास अमृतराव देशमुख को भी याद कर रहे हैं, जो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजे गए. नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे. उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था.
1902, रिमेम्बरिंग अमेरिकन नॉवेलिस्ट जॉन स्टीनबेक, who was best known for The Grapes of Wrath, 1939, which summed up the bitterness of the Great Depression decade and aroused widespread sympathy for the plight of migratory farm workers. 1932, remembering the legendary Elizabeth Taylor, who got a big break as a child actress. She was only 11 at that time, playing Priscilla in Lassie Come Home in 1943, and the following year she moved into the status of a star in the movie National Velvet. And of course, friends, this lovely girl grew up to be a great Hollywood actress, starring in multiple movies, including Cat on a Hot Tin Roof, Cleopatra, Who's Afraid of Virginia Woolf, and Taming of the Shrew. Few Hollywood luminaries have shared their reflections on their time with Liz Taylor. Let's listen to it.
When I tried to get over $1 million, it was like, are you insane? We don't pay women $1 million.
She was a huge driving force in paving the way for women, and she knew just the power that she had. She knew her worth.
My grandmother and I We used to argue about feminism. She thought that feminism meant like anti-feminine, but I think she was actually the perfect example of somebody who could embrace everything that it meant to be a woman and find power in it.
Liz Taylor was one of the first celebrities to take part in HIV/AIDS activism. She co-founded the American Foundation for AIDS Research in 1985 and the Liz Taylor AIDS Foundation in 1991. And of course, friends, besides the innumerable honors and awards that she received, the American Film Institute named her the seventh greatest female screen legend in American film history.
हम श्यामलाल बाबू राय को भी उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया प्रसिद्ध गीतकार इंदीवर के नाम से जानती है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और बहुमुखी गीतकारों में से एक थे। इनके लिखे सदाबहार गीत आज भी उसी शिद्दत और एहसास के साथ सुने जाते हैं और गाए जाते हैं जैसे वे पहले सुने और गाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जन्मे इंदीवर 1940 के दशक में मुंबई आए। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1951 के फिल्म मल्हार के गाने बड़े अरमानों से रखा है बालम तेरी कसम से मिला।
बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम।
जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम।
इंदीवर ने चार दशकों में लगभग 1000 गीत लिखे, जिनमें से कई यादगार गाने फिल्मों की सुपर डुप सफलता के कारण बने। उन्हें 1976 में फिल्म अमानुष के गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला।
बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समूड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा।
And friends, today is the birthday of Josh Groban, American popular singer, actor, recognized for his novel blending of contemporary and classical music styles. Growing up, Groban's parents encouraged him to listen to a variety of musical styles. He took their advice to heart, absorbing everything from opera to pop. You Are Still You, a beautiful song, here it is, for Josh Groban.
And you will always shine, and I can feel your heart in mine. Your face I've memorized, I idolize just you. I look up to everything you are.
You Are Still You, that's for Josh Groban. And friends, this singer, I beg your pardon, this guitar man calls himself a melody guy, progressive rock fusion guitar man, founder of rock band Journey. Neil Sean turned 72 today. This guitar maestro started playing guitar at 10 after quitting school to join Carlos Santana, later worked with Bad English and settled down with Journey as the band's lead player, songwriter, vocalist. The one you're listening to, it's a fusion tune called Midnight Express.
आज जयंती है प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार मनोज दास की। उनकी अधिकांश रचनाएं उड़िया भाषा और अंग्रेजी में है। उन्होंने द हेरिटेज सांस्कृतिक पत्रिका और बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका चंदा मामा का संपादन भी किया। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने पहलुओं पर शोध किया और कई दार्शनिक लेख भी लिखे। उनकी साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें भारत के कई सर्वोच्च नागरिक और साहित्य पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। और वहीं आज हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा का जन्मदिन है। वे सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 1984 में फिल्म हिप हिप हुर्रे से हिंदी सिनेमा में अपना निर्देशन डेब्यू किया था और इसी साल उन्हें फिल्म दामोल के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया था। तो श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।